दिन भर रविवार 2 अगस्त मैं हूं निखिल रंजन। संसद में काम ठप करने के लिए सरकार का विपक्ष पर हमला, सांसदों के लिए काम नहीं तो पैसा नहीं लागू करने की उठ रही है बात। मलेशिया एयरलाइंस के लापता विमान MH370 का दूसरा हिस्सा मिलने का दावा। लीबिया से छूटे भारतीय नहीं मानते उनका हुआ था अपहरण।
उत्तर बिठा के शेख को फोन किया तो बाद में उनका शेख आया, आके हमें लेके गए, लेके जाके हमारे साथ कुछ भी इल ट्रीट नहीं किया। जैसे आप बोल रहे थे कि आँख में कपड़ा बांधे या कुछ ऐसा करे, हथकड़ी पहने, ऐसा कुछ भी नहीं।
फैला उजियारा में आज चर्चा दुनिया को राजनीति का पाठ पढ़ाने वाले कौटिल्य की।
Kautilya, for the most part, is a political strategist. He is actually a politician who is...
खबरें होंगी और भी, लेकिन पहले प्रमुख समाचार।
बीबीसी समाचार अमल चौधरी से। संसद में जारी गतिरोध के बीच केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा ने सुझाव दिया है कि सांसदों के लिए काम नहीं तो वेतन नहीं की नीति लागू की जानी चाहिए, जैसे नौकरशाहों के संबंध में होता है। हालांकि इस बयान पर बहस शुरू होने के बाद वह इनकार की मुद्रा में आ गए। शर्मा ने शनिवार को वाराणसी में सुझाव देते हुए कहा था कि नौकरशाहों की तरह काम नहीं तो वेतन नहीं की नीति सांसदों पर भी लागू की जानी चाहिए। पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री महेश शर्मा के अनुसार सरकार इसकी योजना बना रही है और वरिष्ठ मंत्री इस बारे में आम सहमति बनाने के लिए विपक्ष के संपर्क में हैं। बुरुंडी में अधिकारियों का कहना है कि देश के शीर्ष जनरल एडोल्फ शी मिरीमाना की हत्या कर दी गई है। न्यूज एजेंसी AFP ने प्रत्यक्षदर्शियों के हवाले से खबर प्रकाशित की है कि शी मिरीमाना राजधानी बुजुम्बुरा में थे जब उनकी कार पर रॉकेट से हमला हुआ। शी मिरीमाना इससे पहले खुफिया एजेंसी के प्रमुख रह चुके हैं। इस पद से हटाए जाने के बाद भी उन्हें देश में सबसे ताकतवर व्यक्तियों में गिना जाता था। अमरीकी विदेश मंत्री जॉन कैरी का कहना है कि उनका देश हर हाल में मिस्र का साथ देगा। इतना ही नहीं, दोनों देशों के बीच मौजूद कूटनीतिक गतिरोध को भी खत्म करने की हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। राजधानी काहिरा में कैरी ने कहा कि अमरीकी जनता मिस्र के लोगों की सुरक्षा और आर्थिक मजबूती के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा,
The American people are committed to the security.
पूरा अमेरिका आपकी बेहतरी के लिए काम करना चाहता है। इसमें आपकी राजनीति, लोकतांत्रिक प्रक्रिया और आपके समाज की जीवंतता को हमारी मदद करनी होगी। हम चाहते हैं कि आपका हर देशवासी इसमें सहयोग करे, जिससे कि आप अपने भविष्य के लिए और अधिक आश्वस्त महसूस कर सकें। अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन कैरी। मिस्र में पहली बार लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए राष्ट्रपति मोहम्मद मोरसी के तख्तापलट के बाद दोनों देशों के संबंधों में खटास आ गई थी। हालांकि अमेरिका इसे तख्तापलट मानने से बचता रहा है। पूर्वी तुर्की में एक सैन्य पुलिस स्टेशन पर हुए आत्मघाती हमले में 2 तुर्क सैनिक मारे गए हैं और 31 घायल हुए हैं। क्षेत्रीय गवर्नर के कार्यालय ने कहा है कि कुर्द अलगाववादी संगठन PKK ने यह हमला किया है। तुर्क मीडिया में खबरें हैं कि विस्फोटकों से लदे एक ट्रैक्टर को थाने में टकरा कर घटना को अंजाम दिया गया। यह वारदात ईरान से सटे एग्री प्रांत के दोगुबा याजद शहर की है। 24 जुलाई से तुर्की ने इराक तुर्की सीमा के दोनों तरफ कई हवाई हमले किए हैं। हिंद महासागर में स्थित द्वीप रियूनियन के पुलिस अधिकारियों का दावा है कि उन्हें एक विमान के मलबे का एक और हिस्सा मिला है। माना जा रहा है कि यह हिस्सा मलेशियाई एयरलाइंस की उड़ान संख्या MH370 का हो सकता है। पुलिस के अनुसार ये संभवतः विमान के दरवाजे का एक हिस्सा है जो बहते हुए तट तक पहुंचा है। उनके अनुसार इस पर विदेशी भाषा में कुछ लिखा है और कुछ चित्र बने हुए हैं। पुलिस के अनुसार सेंट डेनिस शहर के दक्षिण में उन्हें ये मलबा मिला है। बुधवार को भी इसी जगह से विमान का एक और मलबा मिला था। BBC समाचार।
BBC रेडियो पर दिनभर में आपका स्वागत है। आप ये कार्यक्रम रेडियो के साथ bbchindi.com और मोबाइल पर भी सुन रहे हैं। मैं हूं निखिल रंजन। भारतीय संसद के मानसून सत्र में अब तक कोई काम नहीं हो सका है। सत्ता और विपक्ष में सुलह के सारे प्रयास विफल रहे हैं। कल यानी सोमवार से एक बार फिर संसद का कामकाज दिन शुरू होगा, लेकिन काम हो सकेगा या नहीं ये कहना भी मुश्किल है। आज सत्ताधारी पार्टी BJP की प्रवक्ता निर्मला सीतारमन ने संसद में कामकाज न होने देने के लिए विपक्षी दल कांग्रेस की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने कहा,
दिस गवर्नमेंट हैज शोन हैज प्रूवन दैट टेकिंग ऑल पार्टीज टुगेदर डिस्कसिंग एंड वर्किंग टुगेदर विद एवरी पार्टी व्हिच इज प्रेजेंट इन
इस सरकार ने ये दिखाया है कि वो संसद में मौजूद सभी पार्टियों को साथ लेकर चल सकती है और उनके साथ चर्चा कर सकती है। ये साबित करता है कि संसद सफलतापूर्वक चलेगी, न केवल संसद के समय के सदुपयोग के लिहाज से बल्कि विधायी कार्यों के लिहाज से भी, और कांग्रेस सिर्फ इसी बात से ही डरी हुई है। वे संसद में सरकार की सफलता को नहीं देखना चाहती हैं, वे सिर्फ किसी तरह ये दिखाना चाहती हैं कि ये सरकार संसद को चलाने के काबिल नहीं है। कांग्रेस ये दिखाना चाहती है कि ये सरकार के साथ मिलकर संसद नहीं चला सकती, जबकि 2015 के बजट सत्र ने साबित कर दिया है कि ये सरकार विधायी कार्यों को यूपीए 1 और 2 दोनों से ही ज़्यादा बेहतर तरीके से चला सकती है। बीजेपी प्रवक्ता निर्मला सीतारमण के शब्द। लोकसभा के पूर्व अध्यक्ष सोमनाथ चटर्जी ने समाचार एजेंसी पीटीआई को दिए एक इंटरव्यू में संसद के गतिरोध पर दुख जताया है और कहा है कि इससे लोकतंत्र कमजोर हो रहा है। इसका असर सरकार के खजाने पर भी पड़ा है। अपुष्ट आंकड़ों में कहा जा रहा है कि करीब 65 करोड़ रुपए का नुकसान सांसदों के काम न करने की वजह से हो चुका है। मांग ये भी उठ रही है कि सांसदों के लिए भी काम नहीं तो पैसा नहीं लागू किया जाए। मैंने थोड़ी देर पहले वरिष्ठ पत्रकार ओम थानवी से बात कर पूछा कि क्या ये कर पाना संभव होगा और हुआ तो कितना उचित होगा।
देखिए, ये संभव नहीं है, लेकिन हो जाए तो अच्छा है, लेकिन ऐसा होगा नहीं। और कई सांसदों को तो क्या फर्क पड़ेगा, आप उनको पैसा न दें। आप देखिए कितने तो इसमें करोड़पति अरबपति सांसद हैं और कितने चुनाव में ये लोग पैसा खर्च करते हैं, तो वो इस तनख्वाह के भरोसे नहीं बैठे हैं। लेकिन दलील के हिसाब से अगर देखा जाए तो उनका तो कहना है कि हम सांसद का काम कर रहे हैं, चाहे संसद के बाहर जाके हम लोग धरना दे रहे हैं, हम अंदर दाखिल नहीं हुए, लेकिन सांसद के नाते हम अपना काम कर रहे हैं। तो वो एक पेचीदगी उसमें है और मुझको नहीं लगता कि उस तरह की चीज से कोई बहुत हासिल होगा या उससे आप सांसदों को इसके लिए मजबूर कर सकेंगे कि आप संसद की कार्रवाई में हिस्सा लीजिए।
पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सोमनाथ चटर्जी ने भी इस पर निराशा जताई है और इसमें स्पीकर की भूमिका को भी दायरे में लिया है। आपके हिसाब से स्पीकर की भूमिका अब तक कैसी रही है?
देखिए, मैं ज्यादा गलती तो विपक्ष की मानता हूँ। स्पीकर का काम जो है वो काबू रखना तो है सदन को, लेकिन सदन में अगर कोई आए ही नहीं तो उसके लिए स्पीकर क्या कर सकता है। तो मैं मानता हूं कि कांग्रेस जो है उसने प्रतीकात्मक तौर पे अपना विरोध किया और उनको अभी कहना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी ने चूंकि ऐसा किया था, हम भी ऐसा कर सकते थे, लेकिन हमने उसको उस रूप में अनवरत नहीं जारी रखा ताकि बिल्कुल जो है काम अवरुद्ध न हो संसद का, इसलिए हमने प्रतीकात्मक विरोध कर दिया और अब हम संसद में इनसे जवाब मांगेंगे।
वरिष्ठ पत्रकार ओम थानवी बता रहे थे कि संसद में जो गतिरोध चल रहा है वो देश और समाज के लिए या हमारे लिए कैसा है।
देश दुनिया की खबरें 24 घंटे bbchindi.com के साथ।
लीबिया में सिरते के पास अगवा करने के बाद छोड़ दिए गए 2 भारतीयों ने इस घटना को अपहरण मानने से इनकार किया है। सिरते यूनिवर्सिटी और उससे जुड़े कॉलेजों में पढ़ाने वाले 4 भारतीयों को 4 दिन पहले कथित रूप से हथियारबंद लोगों ने अगवा कर लिया था। ये लोग भारत वापस आ रहे थे। इनमें से 2 लोगों को शुक्रवार की शाम छोड़ दिया गया। ये दोनों कर्नाटक के हैं। हमारे सहयोगी इमरान कुरैशी ने इनसे बात करने के बाद ये रिपोर्ट भेजी है।
लक्ष्मीकांत रामकृष्णा से बात करके ऐसा नहीं लगता है कि हाल ही में उनका सामना किसी डरवाने अनुभव से हुआ हो। असलियत यह है कि वह सिर्फ 48 घंटे पहले अजनाथ मिलिशिया की हिरासत में थे। 4 दिन पहले उनके और उनके साथी कर्नाटका के MS विजय कुमार, तेलंगाना के गोपी कृष्णा और आंध्र प्रदेश के बलराम को अगवा कर लिया गया था। ये 4 लोग भारत वापस आ रहे थे। हमने उनसे पूछा कि उनके अगवा होने का क्या कारण था, तो उन्होंने कहा,
हम 4 दोस्त थे। 4 दोस्तों में 2 कार बना के, क्योंकि हमारा बहुत सारा लगेज था, तो इसलिए 2 कार बना के हम त्रिपोली की तरफ जा रहे थे। तो सिर्फ के बाद में एक चेक पॉइंट आया, तो उस चेक पॉइंट पे हम लोगों को देख के वो लोग छोड़ दिए। हम आगे गए, 12 किलोमीटर दूर में आ गए, तो पीछे से हमारा साथियों का फोन आया, तो कह रहे थे कि तो आप लोग भी आ जाओ, वापस आ जाओ। बोल के ऐसा उनका ड्राइवर फोन किया हमारे ड्राइवर को, तो अब हम भी वापस गए जाके वहाँ पे कुछ देखे हुए अपने लड़के मतलब हमारे स्टूडेंट्स भी थे उधर। तो जाके चलो क्या बात है बात कर लेंगे बोल के वापस आए थे, तो हमारे स्टूडेंट्स कहीं और निकल गए थे। तो तब हमें भी उधर बिठा गया। हम बता रहे थे कि हम यूनिवर्सिटी के लेक्चर है बोल रहे, लेकिन वो नए बंदे थे, वो नहीं सुने, इसलिए हमें भी उनके साथ मिले। शेख को फोन किया उन्होंने, उधर बिठा के शेख को फोन किया, तो बाद में उनका शेख आया, आके हमें लेके गए, लेके जाके हमारे साथ कुछ भी इल ट्रीट नहीं किया। जैसे आप बोल रहे थे कि आंख में कपड़ा बांधे या कुछ ऐसा करे, हाथकड़ी पहने, ऐसा कुछ भी नहीं।
लक्ष्मीकांत और विजय कुमार का भी मानना है कि उनके साथ जो घटना हुई उसको अगवा करना नहीं कहा जा सकता है। विजय कुमार ने यही बात उनकी पत्नी सुनीता से कहा। सुनिए सुनीता विजय कुमार का क्या कहना था।
इट्स a common fight for everybody that going up and down and holding the gun. So we never felt that they are the bad.
मेरे पति को भी नहीं लगता कि उनका अगवा किया गया था. हम कुछ नहीं कह सकते. वहाँ ऑटोमेटिक मशीन गन लटकाकर युवकों का रोड पे घूमना सामान्य है. ये पता नहीं था कि उनको इस तरह क्यों लेकर चले गए. ये थे सुनीता विजय कुमार के शब्द. उनको ले जाने के बाद उनके साथ किस तरह का सलूक किया गया, लक्ष्मीकांत रामकृष्णा कहते हैं.
हमें एक बहुत बड़ा कमरा दिए, वहाँ पे रजाई नहीं क्या बोलते कारपेट, वो शेख बोल रहे थे कारपेट उठा के डाल लो अपना बोल के ऐसा बोल रहे थे. लेकिन शेख के शागिर्द थे, शागिर्द बोल रहे थे नहीं नहीं वो लोग हमारे उस्ताद है, उन्हें वो काम नहीं करना चाहिए, हम कर देंगे बोल के. डॉक्टर आप लोग इधर ही रहो बोल के अच्छी तरह से पेश आए.
लेकिन गोपी कृष्णा और बलराम की रिहाई क्यों नहीं की गई, लक्ष्मीकांत रामकृष्णा कहते हैं.
के बारे में कुछ कह नहीं सकता, लेकिन एक्चुअली शेख बोल रहे थे कल ही रिलीज कर देंगे. कल ही मतलब एस्टरडे, सैटरडे को रिलीज करेंगे बोल के ऐसा बोल रहे थे. लेकिन कल यहाँ पे कुछ फाइटिंग्स वगैरह, कुछ क्लैशेस आ गए, उनका झगड़ा हो गया उनका और चेक पॉइंट पे जहाँ से हम आ रहे थे उसी चेक पॉइंट से झगड़ा हो रहा था. तो वो लोग खुद डिस्टर्ब्ड है, शायद अब तक.
अजीब बात यह है कि लक्ष्मीकांत की नौकरी का कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं किया गया था, लेकिन शेख ने उनको कहा है कि वो वापस आकर पढ़ाएं. विजय कुमार तो अपना इस्तीफा देकर ही चल पड़े थे जब यह घटना हुई. अब इंतजार है सिर्फ गोपी कृष्णा और बलराम का. बेंगलुरु से इमरान कुरैशी.
हिंद महासागर में रीयूनियन द्वीप के पुलिस अधिकारियों का कहना है कि उन्हें विमान के मलबे का एक और हिस्सा मिला है. बुधवार को भी इसी जगह विमान का एक और टुकड़ा मिला था. कयास लगाए जा रहे हैं कि ये मलबा मलेशिया एयरलाइंस के लापता विमान MH370 का हो सकता है. एक साल पहले लापता इस विमान को ढूंढने की सारी कोशिशें नाकाम रही थीं. बीबीसी संवाददाताओं का भेजा ब्यौरा सुनिए रोहित जोशी से.
पुलिस का कहना है कि ये विमान के दरवाजे का एक हिस्सा है जो बहते हुए तट तक आ पहुंचा है. इस पर विदेशी भाषा में कुछ लिखा हुआ है और कुछ चित्र बने हुए हैं. ये मलबा सेंट डेनिस शहर के दक्षिण में मिला है. इस मलबे को परीक्षण के लिए फ्रांस भेज दिया गया है, जहां अगले हफ्ते फ्रांस के रक्षा मंत्रालय की प्रयोगशाला में इसका परीक्षण किया जाएगा. बुधवार को भी इसी जगह से विमान का एक मलबा मिला था, जो मलेशिया एयरलाइंस के लापता विमान MH370 का मलबा बताया जा रहा है. बुधवार को मिले विमान के मलबे को भी विश्लेषण के लिए फ्रांस भेज दिया गया था. इस बीच मलेशिया के परिवहन मंत्री लियाओ तियांग लाई ने कहा है कि बुधवार को विमान के पंखों के जो हिस्से रियूनियन द्वीप पर मिले थे वो बोइंग 777 के ही हैं. उन्होंने कहा है कि फ्रांस के अधिकारियों और बोइंग विमान निर्माताओं ने इस बात की पुष्टि की है. इससे पहले शनिवार को ऑस्ट्रेलियाई यातायात सुरक्षा ब्यूरो के मुख्य आयुक्त मार्टिन डोलन ने कहा था कि विमान के पंख के इस टुकड़े के जरिए विमान हादसे की वजहों को जानने की कोशिश की जाएगी. क्या ये MH370 का ही टुकड़ा है? हम और भी अधिक भरोसे के साथ ये कहने की स्थिति में आते जा रहे हैं कि ये टुकड़ा MH370 का ही है. इस बात को पूरी तरह मालूम कर लेने के बाद हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि इस विमान को क्या हुआ था और ये टुकड़ा उससे कैसे अलग हो गया. साथ ही हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि हम अब तक इस विमान हादसे के बारे में जो कयास लगा रहे थे वे कितने सही थे. ये सारी प्रक्रिया बहुत सावधानी से और तफसील से पूरी की जाएगी, इसलिए इसमें कुछ समय लगेगा. ये थे ऑस्ट्रेलियाई यातायात सुरक्षा ब्यूरो के मुख्य आयुक्त मार्टिन डोलन के शब्द. पिछले साल मलेशिया एयरलाइंस का विमान MH370 कुआलालंपुर से बीजिंग की तरफ जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही लापता हो गया. विमान पर कुल 239 लोग सवार थे. जांचकर्ताओं का मानना है कि ये विमान बीजिंग की तरफ उड़ते हुए कहीं समुद्र में गिर गया था, लेकिन ये हादसा क्यों हुआ इसकी जानकारी किसी को भी नहीं है.
लापता विमान का एक और टुकड़ा मिलने का दावा. रिपोर्ट सुना रहे थे रोहित जोशी. और अब वो हमारी साप्ताहिक प्रस्तुति जिसका इंतजार आप पूरे हफ्ते करते हैं, यानी कि फैला उजियारा. प्रोफेसर सुनील खिलनानी की श्रृंखला इनकारनेशंस चौथी कड़ी में आज जानिए उनके बारे में जिन्होंने शासन करने और सत्ता पर काबिज रहने के तौर तरीके सिखाए. चंद्रगुप्त के साथ मिलकर एक ऐसे विशाल साम्राज्य की स्थापना की जिसका विस्तार बहुत बड़े भूभाग पर था. प्रस्तुत कर रहे हैं मोहनलाल शर्मा.
I've come to a cream-colored building. मैं उस दूधिया रंग की इमारत में हूँ जिसके बड़े बड़े गुंबद हैं, लेकिन इसकी असल खासियत है अभिलेखागार, जहाँ एक अनूठी प्राचीन पांडुलिपि सहेज कर रखी गई है जो भारतीयों को आज भी प्रेरित करती है। इस पांडुलिपि को अर्थशास्त्र के नाम से जाना जाता है, जिसे कम से कम 2000 साल पहले तैयार किया गया था। अर्थशास्त्र के बारे में हमें जानकारी कैसे मिली, ये अपने आप में एक अलग कहानी है। 100 साल से कुछ पहले की बात है, मध्य भारत में मैसूर नाम की एक रियासत थी। इसमें ओरिएंटल लाइब्रेरी थी, जिसमें रुद्रपट्टनम श्याम शास्त्री नाम के एक लाइब्रेरियन थे। उनका काम था लाइब्रेरी में मौजूद प्राचीन पांडुलिपियों की देखभाल करना। ये वर्ष 1905 की बात है। तंजौर से गुमनाम ब्राह्मण इस लाइब्रेरी में पहुंचता है और ताड़पत्रों से बनी एक पांडुलिपि रुद्रपट्टनम श्याम शास्त्री के हाथ में रख देता है। श्याम शास्त्री ने इस तरह की पांडुलिपि इससे पहले नहीं देखी थी, लेकिन उन्हें फौरन एहसास हो गया कि इसमें कुछ खास है। मैसूर की ओरिएंटल लाइब्रेरी को अब ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम से जाना जाता है। उन ताड़पत्रों पर शासन व्यवस्था की कला के बारे में विस्तार से लिखा गया था। अर्थशास्त्र भारतीय इतिहास के शुरुआती दौर का अपनी तरह का एकमात्र गैर धार्मिक ग्रंथ। जब इसके बारे में पता चला तो पश्चिमी विचारकों को बड़ी हैरानी हुई, क्योंकि उन्हें लगता था कि भारत के लोग मूल रूप से आध्यात्मिक चिंतन ही करते हैं। लेकिन अर्थशास्त्र तो एक तरह से सामरिक इबारत है, जिसमें सत्ता पाने और सत्ता में बने रहने के लिए हर तरह के साधनों के बारे में बताया गया है। पांडुलिपि हाथ में आने के बाद रुद्रपट्टनम श्याम शास्त्री ने सिलसिलेवार तरीके से उसका अनुवाद शुरू किया। इससे इतिहासकारों को प्राचीन भारत के बारे में जानकारी के लिए जैसे खजाना हाथ लग गया। 20वीं सदी के राष्ट्रवादी भारतीयों को भी शासन करने के लिए इससे बड़ी प्रेरणा मिली। ये संयोग की बात है कि वर्ष 1905 में अर्थशास्त्र की पांडुलिपि मिली और उसी साल पश्चिम की ताकत में थोड़ी गिरावट आई। वर्ष 1905 में ही जापान ने युद्ध में रूस को शिकस्त दी। आधुनिक काल में किसी पश्चिमी ताकत पर एशियाई राष्ट्र की ये पहली विजय थी। ये सारा घटनाक्रम उन तमाम लोगों के लिए किसी तोहफे की तरह था जो औपनिवेशिक शासन से आजादी चाहते थे। भारत के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार शिवशंकर मेनन कहते हैं,
द डिस्कवरी ऑफ द अर्थशास्त्र राइटली और रॉन्गली वाज सो यूजफुल टू द नेशनलिस्ट टू हेल्प टू बिल्ड।
अर्थशास्त्र के बारे में जब राष्ट्रवादियों को पता चला तो ये उनके लिए बड़ा उपयोगी साबित हुआ। ये वो लोग थे जो भारत के अतीत और संभावनाओं के बारे में चेतना पैदा करना चाहते थे।
इससे भारत की आजादी के लिए लड़ने वालों का उत्साह बढ़ा। फिर एक समय ऐसा भी आया जब बढ़ती प्रतिस्पर्धा के बीच वैश्विक होते भारत के महत्वाकांक्षी लोगों ने इससे काफी कुछ सीखने की कोशिश की। मैसूर की लाइब्रेरी में हम इस पांडुलिपि को देखने पहुंचे।
This is it.
तो ये है वो पांडुलिपि। इस पांडुलिपि को हमारे सामने इस तरह से लाया गया जैसे कोई जायकेदार पकवान परोसता है। इसमें एक खास तरह के तेल की महक आ रही है, जिसका इस्तेमाल पांडुलिपियों को सहेजने के लिए किया जाता है।
You can hear just about the sound of the pages being turned by the archivist.
अब आप इन पन्नों को पलटाए जाने की आवाज सुन सकते हैं। हालांकि इसमें काफी सावधानी बरती जा रही है। क्या इस पांडुलिपि को पढ़ा जा सकता है? तो जवाब हाँ में मिलता है।
वृत्तशीर्णम स्वयं पतितम पुष्प फलन देव।
शासन करने की नीति और विधि के संबंध में ये पांडुलिपि 1000 साल से भी अधिक समय पहले तैयार की गई थी। वैसे तो इसे हाथ से लिखा गया है, लेकिन लिखावट इतनी सुंदर है कि ऐसा लगता है कि मानो इसे छापा गया हो। माना जाता है कि अर्थशास्त्र की रचना कौटिल्य ने की, जिन्हें चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है। कुछ लोगों का मानना है कि कौटिल्य महान राजा चंद्रगुप्त के मंत्री थे, जिन्हें भारत का पहला चक्रवर्ती सम्राट भी कहा जाता है और जिन्होंने मौर्य साम्राज्य को खड़ा किया था। कौटिल्य के बारे में तथ्य भले ही धुंधले हों, लेकिन उनके प्रति भारतीयों में गजब का आकर्षण रहा है। कौटिल्य के बारे में कहानियां भी बहुत हैं। ऐसी ही एक कहानी है जिसमें कौटिल्य ने सुना कि एक माँ अपने भूखे बेहद उतावले बच्चे को बता रही है कि गर्म रोटी को बीच से नहीं किनारों से तोड़कर खाना चाहिए। कौटिल्य ने इससे प्रेरणा लेते हुए विजय की अवधारणा विकसित की, जिसका सार ये है कि विरोधी की राजधानी पर हमला मत करो, बल्कि उसके बाहरी इलाकों पर पहले धावा बोलो। अर्थशास्त्र में सत्ता की कुंजी सिर्फ मजबूत सेना में निहित नहीं है, बल्कि इसमें चालाकी और होशियारी पर भी जोर दिया गया है। तभी तो इसमें कहा गया है कि तीरंदाज अपने एक तीर से एक व्यक्ति को मार सकता है, निशाना चूक भी सकता है, लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति की रणनीति उन्हें भी मार सकती है जो अभी पैदा भी नहीं हुए हैं। सत्ता और राजनीति पर लिखी इबारतों की यदि हम व्यापक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य से तुलना करते हुए प्लेटो या अरस्तु की भी बात करें तो आप अर्थशास्त्र को कई मामलों में अद्वितीय पाएंगे। कई विद्वान अर्थशास्त्र की तुलना पश्चिम में मैकैवली की रचना द प्रिंस से करते हैं। टेक्सास यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर पैट्रिक ओलेविल उन कई विद्वानों में से एक हैं जिन्होंने कौटिल्य के अर्थशास्त्र का अनुवाद किया है।
Kautilya, for the most part, is a political strategist. He is actually a politician who is serving a king.
वो दरअसल एक राजनीतिज्ञ थे जो एक राजा की सेवा कर रहे थे और उसकी ताकत बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। उनके लिए राजा एक ऐसा व्यक्ति था जिसमें विजय की आकांक्षा है। इस तरह कौटिल्य की नीति के केंद्र में साम्राज्य विस्तार की भावना थी।
He gives the very technical term in Sanskrit, vijigishu.
कौटिल्य के लिए विजय की सीमा किसी खास भूभाग या जगह तक सीमित नहीं थी, सारा विश्व ही उनके साम्राज्य विस्तार के दायरे में आता है। विजय के लिए राजा के पास धन और राज्य पर अच्छा नियंत्रण होना चाहिए, इसलिए कौटिल्य ने सरकारी खजाने को बढ़ाने और भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के उपाय बताए हैं।
जिस तरह पानी में तैरती मछली को देखकर पता नहीं चलता कि उसने कब पानी पी लिया, उसी तरह तैनात अधिकारियों के बारे में पता नहीं चलता कि धन उन्होंने कब हड़प लिया।
हर चतुर राजा ये सुनिश्चित करना चाहता है कि उसके नागरिक विद्रोह न करें। कौटिल्य कहते हैं कि विद्रोह से बचने के लिए राजा को कुछ ऐसे काम करने चाहिए जिससे प्रजा के मन में भ्रम बना रहे। इसके लिए राजा को जासूसों की भी मदद लेनी चाहिए जो लोगों में घुल मिल जाते हैं। इतना ही नहीं, जब कोई राजा के खिलाफ सिर उठाए तो उसे कठोर दंड देना चाहिए। कौटिल्य ने 18 तरह के दंड भी बताए हैं। मैं रायसेना हिल जा पहुंचा हूं जो नई दिल्ली में है, जहां से भारत सरकार का शासन चलता है। यहां की सुरक्षा व्यवस्था काफी चाक चौबंद है। कौटिल्य के शब्द मेरे कानों में गूंज रहे हैं। यहां कई इमारतें हैं, इनमें से एक है राष्ट्रपति भवन। इन्हीं इमारतों में रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय और प्रधानमंत्री का दफ्तर है। शासन व्यवस्था पर कौटिल्य की जो अवधारणा है वो यहां भी लागू होनी चाहिए। जैसे कौटिल्य का राज्य पानी में तैरते बर्फ के टुकड़े की तरह है, जहां गोपनीयता, जासूसी और चालबाजी का अपना महत्व है। कौटिल्य ने तो गोपनीय आचरण पर भी एक पूरा अध्याय लिखा है। इसमें उल्लेख है कि शासक अपने अधिकारियों पर भी भरोसा नहीं कर सकता है। तभी तो कौटिल्य कहते हैं, उड़ती चिड़िया किस ओर जाएगी ये जानना मुमकिन है, लेकिन अधिकारी और उनके इरादों को जानना संभव नहीं। टेक्सास यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर पैट्रिक ओलेविल कहते हैं,
So the whole area of king's food becomes important area because
राजा के खाने पीने की जगह बड़ी अहम होती थी, क्योंकि जहर देकर राजा को आसानी से मारा जा सकता था। राजा के परिवार में ही ऐसे कई लोग होते थे जो उनकी जान के लिए खतरा बन जाते थे। राजा को तो पता भी नहीं होता था कि खतरा कहाँ है और किस तरफ से आ सकता था।
And it can come from anywhere.
सुनने में भले ही अटपटा और थोड़ा सा पागलपन लगे, लेकिन सद्दाम हुसैन और कर्नल गद्दाफी के मामले में भी कुछ ऐसा ही हुआ था, और दोनों ने ही कौटिल्य की सलाह का मानो अनुसरण किया हो और अपनी हत्या की आशंका को न्यूनतम कर दिया। कौटिल्य जानते थे कि सत्ता के अपने जोखिम होते हैं। उन्हें यह भी पता था कि राजा के मन में सत्ता हाथ से छूटने का भय भी लगातार बना रहता है। राजा दूसरे राज्यों से किस तरह निपटे, कौटिल्य ने इस बारे में भी काफी परामर्श दिया है। इसमें हैरानी की कोई बात नहीं कि भारतीय दिमाग को समझने के लिए पाकिस्तानी सेना ने कौटिल्य का अध्ययन किया। भारत के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार शिवशंकर मेनन,
इस आदमी ने उन्हीं समस्याओं के बारे में सोचा जो बहुत हद तक आज हमारे सामने खड़ी समस्याओं जैसी हैं। कौटिल्य एक तरह से बहुध्रुवीय विश्व के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें सिर्फ राजा के गौरव की बात नहीं थी बल्कि उसके लोगों और राज्य की संपन्नता का भी सवाल था। मुझे लगता है कि अतीत में जाकर सोचने, समझने और सीखने में कोई बुराई नहीं है।
कौटिल्य या चाणक्य एक पहेली की तरह भारतीय राजनीति में अक्सर नजर आते हैं। जब भी सत्ता की अभिलाषा झलकती है, उनका जिक्र जरूर होता है।
In 1936, an essay was published in Calcutta's Modern Review.
वर्ष 1936 में कलकत्ता मॉडर्न रिव्यू में एक निबंध छपा था। इसमें एक युवा राजनेता पर हमला बोला गया था। उनका नाम है जवाहरलाल नेहरू, जो उस समय भारत की आजादी की लड़ाई के प्रमुख चेहरे थे। इस निबंध में नेहरू को अलोकतांत्रिक प्रवृत्ति वाला बताया गया था। लेखक ने यह निबंध चाणक्य के नाम से लिखा था, लेकिन इसके असल लेखक खुद नेहरू थे, जो कुछ ही दशक बाद भारत के पहले निर्वाचित नेता बने, जिन्होंने भारत को एक लोकतंत्र के तौर पर स्थापित करने के लिए काफी कुछ किया, जिन्होंने कई वर्ष संसद में बिताए। इस समय मैं उसी संसद को देख रहा हूं, लेकिन शायद हर प्रजातंत्रवादी के भीतर एक चाणक्य या कौटिल्य मौजूद होता है।
चाणक्य सत्ता का चक्र, फैलाओ जियारा की ये कड़ी आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। और अब वक्त है खेल समाचारों का। खेल समाचार लेकर के आदेश कुमार गुप्त जी स्टूडियो में आ चुके हैं। बताइए आदेश जी, क्या है आज?
विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में आज भारत की महिला रिकर्व टीम को रजत पदक मिला। दीपिका कुमारी, लक्ष्मी रानी माझी और रिमिल बुरुली की तिकड़ी का सामना फाइनल में रूस से था, जहां उन्हें कड़े मुकाबले में 5-4 से हार का सामना करना पड़ा। लेकिन अच्छी बात यह कि इस तिकड़ी ने आने वाले ओलंपिक्स खेलों में अपनी जगह बना ली है। उधर हरारे में न्यूजीलैंड और जिम्बाब्वे के बीच पहला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मुकाबला खेला जा रहा है, जहां न्यूजीलैंड ने निर्धारित 50 ओवर में 4 विकेट खोकर 303 रन बनाए। उनकी ओर से रॉस टेलर ने नाबाद 112 रन बनाए, जबकि थोड़ी देर पहले जिम्बाब्वे ने भी 3 विकेट खोकर 264 रन बना लिए थे। हालांकि पारी का 47वां ओवर चल रहा था, यानी घुटने नहीं टेके जिम्बाब्वे ने। उधर मीरपुर में बांग्लादेश और श्रीलंका के बीच खेले जा रहे दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच के चौथे दिन का खेल भी बारिश की भेंट चढ़ गया। मैच में अब तक केवल एक दिन का समय बचा है, ऐसे में टेस्ट मैच निश्चित रूप से ड्रॉ की तरफ जा रहा है। इस मैच में केवल पहले ही दिन का खेल हुआ था, जब बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 8 विकेट खोकर 246 रन बनाए थे।
बहुत शुक्रिया आदेश जी। और अब आखिर में सुन लेते हैं प्रमुख समाचार एक बार फिर।
बीबीसी समाचार। संसद में जारी गतिरोध के बीच केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा ने सुझाव दिया है कि सांसदों के लिए काम नहीं तो वेतन नहीं की नीति लागू की जानी चाहिए, जैसे नौकरशाहों के संबंध में होता है। बुरुंडी में अधिकारियों का कहना है कि देश के शीर्ष जनरल अडोल्फ शी मिरीमाना की हत्या कर दी गई है। न्यूज़ एजेंसी AFP ने प्रत्यक्षदर्शियों के हवाले से खबर प्रकाशित की है कि शी मिरीमाना राजधानी बुजुम्बुरा में थे, जब उनकी कार पर रॉकेट से हमला हुआ। अमरीकी विदेश मंत्री जॉन कैरी का कहना है कि उनका देश हर हाल में मिस्र का साथ देगा। इतना ही नहीं, दोनों देशों के बीच मौजूद कूटनीतिक गतिरोध को भी खत्म करने की हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। राजधानी काहिरा में कैरी ने कहा कि अमरीकी जनता मिस्र के लोगों की सुरक्षा और आर्थिक मजबूती के लिए प्रतिबद्ध है। बीबीसी समाचार।
प्रमुख समाचार सुना रहे थे अमल चौधरी। दिनभर में आज इतना ही। आज स्टूडियो संभाला हेमंत कुशवाहा ने। आपसे अगली मुलाकात होगी अब से एक घंटे बाद घटना चक्र में। निखिल रंजन को सभी साथियों के साथ दीजिए अनुमति। नमस्कार।